نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير amazed by Al-Asmaul Husna. اس سیریز میں آج ہم کریں گے الرزاق. کتنا فیمیلیر نام ہے, اور میں سوچ رہی تھی کہ اتنا کچھ جو بیان کرنا ہوتا ہے, اگر اس سے پہلے دو تین جملے میں اپنے ہی بول دوں کہ میں کیا سوچتی ہوں, تو میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ تم اپنے دل سے بتاؤ کہ تمہیں الرزاق لفظ سن کر کیا محسوس ہوتا ہے. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سارے ہی بھوکے, سوائے اس کے جس کو اللہ کھانا دے دے. قرآن کے پہلے صفحے پہ دیکھیے مما رزقناہم ينفقون کی بات ہے کہ ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی کسی کو کچھ دینے کا اگر حوصلہ بھی پڑ جائے اور دل میں خیال آ جائے تو یہ مت سوچنا کہ اپنے پاس سے دے رہے ہیں, وہ رزاق ہے جس نے دیا اور تم دیتے ہو. اور مجھے لگتا ہے سارے ہی منگتے, سارے ہی بھوکے, سارے ہی ننگے, اللہ یہ کہ جس کو اللہ کھلا دے, اللہ یہ کہ جس کو اللہ پہنا دے, یا وہ جس کو اللہ نے کھلانے پلانے کا ارادہ فرمایا. تو رزاق لفظ عربی زبان کا بڑا خوبصورت لفظ ہے. ہمارے ذہن میں اس کے ساتھ ہی روٹی کپڑا اور صرف کھانا پینا آتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں رزق کا تصور بڑا ہی محدود ہے. ہم اس طریقے سے رزق کے لفظ کو لیتے ہیں کہ روٹی کھانا پانی, اور بہت بھی ہوگا تو مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن حقیقت کہہ کے رزاق کے بارے میں سوچ لیجئے تو پوری زندگی جو ہے وہ ساتھ ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الرزاق ہے. اور لفظ رزاق کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر لفظ رزق چھپا ہوا ہے, رزاق. عربی زبان میں اس مادے سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ملتے ہیں وہ ایک تو ہے الرزاق, یہ تو ایک ہی بار ہے قرآن میں, ابھی سب سنیں گے, صرف ابھی جذب کیجئے. لیکن رازقین, رازق لفظ سے جمع کا صیغہ, اس میں یہ قرآن پاک میں 6 دفعہ آیا ہے, تو گویا کہ پھر اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا. تو انشاءاللہ ہم آج یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب آپ رازق کہتے ہیں تو کیا ہے, اور جب اس کو آپ رزاق کہتے ہیں تو کیا ہے. ساؤنڈ سے بھی آپ کو فرق ہو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں اللہ تعالیٰ کو الرازق سے زیادہ رزاق, فعال کا وزن ہے, سپرلیٹیو ڈگری, افضل تفضیل کا صیغہ. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس انسانیت کو کھلایا, ایسے ہی میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ کون کتنا کھاتا ہے, ہم کتنا کھاتے ہیں. اور اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو لفظ رزاق ذہن میں رکھیے, ذرا رزاق. بچپن سے نانی سے ایک کہانی سنی بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ تو کھلاتا ہے تو میں بھی کھلا سکتا ہوں, تو پھر مجھے تو موقع دے. کہا ٹھیک ہے, کتنا وقت چاہیے تیاری پہ؟ کہا اتنا اتنا. کئی سال تیاریاں کرتا رہا, اور اس کے بعد جب کہا تیار ہو, ہاں چلو اللہ بھیجو اپنے لشکروں کو, کہا ابھی صرف سمندر کی ایک کونے کی کچھ مچھلیاں آئیں اور سارا ختم, سب ختم. ذرا بھی فوکس کیجئے لفظ رزاق پہ, کتنا کھلاتا ہے. ہم تو 100 لوگوں کا کھانا پکانا ہو, ایک شادی کا کھانا جو ہمارے یہاں 200-400 لوگوں سے کم از کم شروع ہو جاتا ہے, کتنا فکر ہوتا ہے, کیا پکائیں, کتنوں کو کھلائیں, خرچہ کتنا ہے, کیا ہوگا اس سے, یہ ہوگا وہ ہوگا, آپ ذرا سوچیے. اور کتنا ایک وقت کا کھانا, 500 لوگوں کا چلیے, 200 لوگوں کا, 400 کا, بڑی شو مار کے 1000 کا کر لیں. شو سے مراد یہ ہے کہ آپ 10 ڈشیں کر لیں ایک ہی ٹائم صرف, اور رب تو ہمارے کلچر میں عموماً 3 دفعہ کھلاتا ہے, اور پھر بیچ کے سنیکس الگ ہیں, اور شام کی چائے اور جلیبیاں الگ ہیں. ذرا سوچیے اس رب کو, اور جو مستقل کھلا رہا ہے. آپ کو تو سب سے زیادہ کون کھاتا ہے, جس کو آپ کہہ سکتے خوش خوراک, وہ بلیو ویل مچھلی ہے. بلیو ویل کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ سب سے بڑا جانور ہے جس کی روز کی خوراک 4 ٹن ہے. 4 ٹن عام طور پہ آپ دیکھیے جو انسانوں میں زیادہ کھا لیتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں پیٹو, لیکن آپ دیکھیے کہ یہ مچھلی جو اتنا کھاتی ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اور کئی لوگ تو کھانا دیکھتے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ کون کھلاتا ہے, کس کی خوراک ہے 4 ٹن کھانا ایک دن میں؟ اور کہتے ہیں کہ ویل کی یہ نسل روزانہ کل نامی 4 کروڑ 400,000 समंदरी पौधे और इसी तरह बाकी मछलियों को अपनी गिज़ा बनाता है। इतनी गिज़ा किसी और की नहीं होती। इसी तरह हाथी रोज़ाना तकरीबन 18 घंटे 18 आवर्स खाने और अपने चारे की तलाश में रहते हैं। जी, तो आप कह सकते हैं कि वेल की तरह अफ्रीकी नस्ल के हाथियों की खुराक भी बहुत होती है। और इसी तरह का एक माहिर शख्स है जिसका नाम है नॉर्मन ओएन स्मिथ। वो कहते हैं कि अफ्रीकी हाथी रोज़ाना अपने वज़न के 1% के बराबर खाना खाते हैं। और आपको पता है कि एक अफ्रीकी हाथी का एवरेज वेट क्या होता है? 6,000 किलोग्राम। यानी वो रोज़ाना तकरीबन 60 किलोग्राम खुश्क चारा खाते हैं, जबकि दूध देने वाली मादा हाथी फीमेल एलिफेंट रोज़ाना अपने वज़न का तकरीबन 1.5%, 1.5% चारा खाती है। और लिखते हैं कि अगर इस चारे में पानी की मिकदार भी शामिल कर लें तो अफ्रीकी हाथी रोज़ाना 250 किलो 250 किलो चारा खा जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और आप देखिए कि दिन के पीरियड 18 आवर्स सिर्फ चारे की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। अगर आज हम भी सिर्फ खाने और पीने के लिए जी रहे हैं तो क्या जी रहे हैं? कभी तो इस बारे में इंसान सोचे तो सही, गौर तो करे। कितना एक इंसान को अल्लाह ने आला मकसद दिया, लेकिन कुछ लोग खाते भी और साथ तनकीद नक्स, ये ऐसा नहीं ये ऐसा नहीं, आम खट्टे हैं ये मीठे हैं, दिस दिस दैट, और करते कराते। आप देखिए कि जिसको आप कहते हैं कि खाना भी नहीं छोड़ते और बातें करना भी नहीं छोड़ते, और उनका गुमान क्या है कि हम इससे बच जाएंगे और बस देखना। और बीवी बेचारी सारा दिन खाना पकाती रहे, एक बार शुक्रिया कोई कह दे तो बड़े नसीब की बात है। अल्लाह की बात देख लीजिए। इसी तरह चीनी नस्ल का एक बड़ा पांडा हर रोज़ तकरीबन 14 घंटे खाने और पीने में सर्व करता है। और तकरीबन इसी तरह के और भी फिगर्स हैं। आपके हमें तो इंसानों का बताएं, लेकिन ये सब को कौन खिलाता है? अर्रज़ाक, ये है रज़ाक, जिसने पैदा करके छोड़ नहीं दिया। अभी अर्रज़ाक तो वो है कि बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो माँ के जिस्म में इरतियाश पैदा कर देता है, एक खिंच पड़ती है। और एक माँ के अंदर अल्लाह ने खुराक का खजाना रख दिया कि ले अब इसको अंदर भी मैंने खिलाया, और अर्रज़ाक तो माँ के पेट में भी खिलाता है। माँ को पता भी नहीं वो क्या खा रही है और वो अंदर से जा किसको रहा। अमेरिका में पाया जाने वाला एक भूरे रंग का यानी स्किन कलर का चमगादड़ 1 घंटे में 1,000 मच्छर खा जाता है। कौन खिलाता है? कभी शिकवा हुआ, कभी गिला हुआ, कभी किसी ने कुछ कहा, और खामोशी से हो रहा है। आप किसी को सिर्फ 2 टाइम का खाना खिला ले। खाना पकाना ना दावत किसी की जान पे बनी होती है, कुछ को तो बड़ी मुश्किल लगती है। हाय हाय, क्योंकि फिर वो एड़ी चोटी का जोर भी लगाना होता है ना अपना आप दिखाने के लिए, इसलिए फिर वो साल में बस एक ही दावत करते हैं। छछूंदर घरों में पाई जाती है ना, कहते हैं कि इसको बहुत खाना चाहिए होता है, हर 2 घंटे में भूख लगती है और इसको इस खाने में कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। और इसको रोज़ाना अपने वज़न के 80-90% जितनी गिज़ा चाहिए होती है, जबकि छोटी छछूंदरें तो हर रोज़ अपने वज़न से भी ज़्यादा खा जाती हैं। अल्लाह अकबर। और फिर इसी तरह हेमंग बर्ड, बर्ड है एक, कैसे गिज़ा के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेवल करता है नॉन स्टॉप। बहुत खुराक खाने वाली एक मखलूक है अल्लाह की। हर 15 मिनट में फलों का जूस पीने लगते हैं। इंशाल्लाह ये जब बातें होंगी तो अक्ल दंग रह जाएगी। आप देखिए कि इतनी छोटी छोटी मखलूक को वो खिलाता है, कीड़े खिलाता, मकोड़े खिलाता, लेकिन खिलाता है ना। तो इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, जोंक का नाम सुन लीजिए, लीच। अपने वज़न से 7 टाइम 7 गुना ज़्यादा खून पी सकती है। तो हुवर रज़ाकुल मतीन, आप ज़रा सा इस लफ्ज़ के ऊपर अपने आप को जमा के याद रखें और फिर बताइए कि आपको खाना पकाना ज़्यादा मुश्किल लगता है या ये सब कुछ जहाँ से आता है इसको उगाना और इसको दूसरों तक पहुँचाना ये बड़ा काम है। आइए थोड़ी सी कुछ किताबी बातें भी कर लेते हैं। अपने लफ्ज़ों में बातें तो मैं आपको 1 घंटा कर दूँ, क्योंकि ये दिल की बातें जो होती हैं ना, ये नहीं ख़त्म होती। लेकिन अर्रज़ाक, तो रिज़्क़ के सही और हकीकी मानी क्या हैं? दो तीन लफ्ज़ याद कर लीजिए अरबी के। हुवन नसीबु वल किस्मतु फमा कुसिमा लना। तीन लफ्ज़ याद रखिएगा। जब आप अल्लाह ताला के नाम अर्रज़ाक को जानने की कोशिशें करते हैं ना, तो ये क्या है? नसीब और तकसीम, जो हमारी तकदीर में कर दी गई है, ये हमारा रिस्क है। और इस नसीब और तकसीम का ताल्लुक खुर्दो नोश यानी खाने पीने के अलावा जिंदगी की हर नेमत से वाबस्ता। बात समझ गए? अच्छा, वो कैसे? लीजिए जरा एक तारीफ। अर्रज़ाक हुवल खालिकुल अर्ज़ाकी वल मुतकफ्फिलु बीईसालिहा। अर्रज़ाक वो जो रिस्क को पैदा करने वाला, पहले रिस्क को पैदा करना भी एक बड़ी बात है, शिपिंग और उसकी फिर ट्रांसपोर्टेशन तो एक बात का खेल है। पहली बात, अर्रज़ाक जो रिस्क को पैदा करता है, और फिर अर्रज़ाक वो जो पहुंचाने का जिम्मेदार भी है, और उसी की वजह से तमाम मखलूक अपने हिस्से का रिस्क वसूल कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि अर्रज़ाक क्या है? सबको रिस्क देने वाला और बहुत रिस्क देने वाला। वाहिद के सीगे के साथ सूरत ज़ारियात की आयत 58 में है, और जमा के सीगे के साथ 6 बार कुरान पाक में ये लफ्ज़ है। ज़रा सा इसको सम अप करिए। अल्लाह की हर नेमत रिस्क है, रिस्क को तकसीम करने वाला अर्रज़ाक है, मखलूक की ज़रूरत के मुताबिक देने वाला अर्रज़ाक है, सारे खजाने जो रिस्क के छुपे हुए हैं उनकी चाबियों का मालिक अर्रज़ाक है। कभी कभी चीज़ें हैं किसी और के पास होती है, देता कौन है? दुनिया में आप देखते हैं कि एक मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ लोगों के हैं। जमा भी उसने किया, ज़मीन की तहों में कितने बीज उगने हैं, समंदरों की तहों में कितने पौधे हैं, माइंस और मादनियात कितनी छुपा के रखी हुई हैं, और आसमान से जो रिस्क आना है वो अपने सब के कोड वर्ड्स एंड पासवर्ड्स अल्लाह के पास हैं। आप तो 4 बिस्किट लाकर बच्चों से बेचारों से छुपा के अलमारी में बंद कर देती हैं ना कि खाना नहीं। वो भी शुक्र करते हैं मामा घर से जाए तो हम खाएं। मामा हम जाइए, आप फिक्र नहीं कर, ज़रा थोड़ी देर बैठ के आइएगा अपनी फ्रेंड्स के पास, क्योंकि उनको पता होता है छुट्टी हो गई, मज़े मिल गए। बड़े होके सुनाते हैं, मामा जब आप जाती थी ना तो हम बड़ी मौज करते थे, फिर जब आखिरी 15 मिनट रहते थे फिर हम सब मिल के जल्दी जल्दी सफाइयाँ करते थे, मामा आ रही हैं, और ऐसी भीगी शक्लें बना के बैठते हैं जैसे आए बेचारे भूखे पीछे से। अल्लाह ने सब कुछ अपने हाथ में रखा हुआ है, तो रिस्क देने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। और याद रखिए कि लफ्ज़ रज़ाक में ये तसव्वुर भी है कि वो जो कभी देता है और कभी रोक भी लेता है। जैसे अभी माँ की मिसाल दी, माँ को पता है चॉकलेट ज़्यादा खाएंगे तो बच्चे रोटी नहीं खाएंगे, तो वो कुछ चॉकलेट छुपा लेती है, कहती है तो सिर्फ सैटरडेज़ को खाते हैं, कुकीज़ तो सिर्फ फ्राइडेज़ को मिलती हैं। आप कहेंगे ऐसी माएँ आज किधर हैं? आज भी हैं ऐसी, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी माएँ ऐसी भी हैं, वो कहती बेटा जो मर्ज़ी खाओ, अच्छा मुझे रोटी नहीं पकानी पड़ेगी, जाओ चिप्स खा लो। तो जो देता है ना उसके पास रोकना भी, जैसे एक ड्राइवर है ना गाड़ी चलाता है तो गाड़ी रोकनी भी उसको आती है, इसी तरह वो हस्ती जो सबको रिस्क पहुंचाने की जिम्मेदार बगैर इम्तियाज के, इंसान चरिंद परिंद काफिर मोमिन फासिक सबको रिस्क देता है मालिक। और ये भी याद रख लीजिए कि आपके मेरे पास तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, अल्लाह के पास कोई नहीं, वो तो अपने हर बंदे को देता है जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, क्योंकि उसके बंदे हैं, जो मर्जी करें। देखिए माँ खाना तो सबको ही देती है, खुशी से दे के ना दे ये अब एक अलग बात है, तो अपने सामने बच्चे को भूख से मरता तो नहीं देखने देती। तो इसी तरह अल्लाह ताला फिर सबको देता है बगैर किसी फर्क से। ज़रा सा डिटेल से देखते हैं कि रिस्क क्या है। नंबर एक, हर वो चीज़ जो इंसान को फ़ायदा देती हो, खुराक लिबास घर सवारी औलाद, इंसान की ज़रूरत की हर चीज़, कायनात की हर मखलूक की हर ज़रूरत, इन सब पे लफ्ज़ रिस्क आता है। लेकिन आज मैं आपको डिफरेंट तरह से इसकी बांट बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए दो तरह का रिस्क है। एक को लिखिए रिस्क आम और दूसरे को लिखिए रिस्क खास, खास किस्म का रिस्क। अच्छा, आम रिस्क क्या होता है? आप कहेंगे वो जो रोज़ खाना पकता है, और ख़ास रिस्क वो होता है जब मेहमानों के आने पे बकता है, तभी तो मेहमानों के आने पे बच्चे बड़े खुश हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। मियाँ साहब भी बेचारे बड़े खुश होते हैं कि आज हमें भी कुछ मिल जाएगा मेहमानों के नाते। बाद में पता चलता है आप आराम से रहिए, ज़रा बाद में खाएंगे। इल्ला माशाल्लाह, ऐसी नहीं है हमारी बहनें, लेकिन सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए जुमले बोल देती हूँ। मुझे पता है कि आपको कितनी मोहब्बत है अपने घर वालों से और आप कितने प्यार से उनके लिए पकाती हैं। ये अलग बात है कि फिर वो कहते हैं ना कि मेहमान तो एक ही दफ़ा खा ले। हमारे एक ब्रदर हैं, तो वो जब कोई दावत घर में हो ना, तो फिर वो मेहमान उनको कहते हैं कि आप भी तो खाइए ना, तो वो कहते हैं आप खा ले, बाद में हम नहीं खाना है, हमने पूरा हफ्ता खाना है। कहाँ फिर इस दावत के बाद कोई खाना पके 4-5 दिन। चुप, मेरी तो कमर टूट गई, मैं खड़ी रही। उस दिन 6 सालन बनाए, 4 बनाए। तो बेगम आपको किसने कहा था? कुछ हमारे गरीबों के भी नसीब में हो कि हमें भी रोज़ एक ही सालन मिल जाए, चाहे सब्जी दाल ही सही। लेकिन अमूमन हम दावतों में इतना पका लेते हैं, नाम भी होता है और दिल भी चाहता है कि मेहमान खा के जाए। और अच्छी बात है कि अगर ज़ाया ना करें तो फराख दस्तरखान बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन यह है कि फिर वो जब तक ख़त्म नहीं होता, वो कई बच्चे भी कहते हैं ना, अब देखना ये कितने दिन तक फ्रिज और फ्रीजर में जाना है। तो बेहतर है कि जो पके जो बचे साथ दे दीजिए, कुछ घर के लिए रख ले, कुछ मेहमानों को बांट दे। अच्छा, उनको भी दे दीजिएगा, कोई हमसाए में गली में जिसको नहीं बुलाया था, कुछ किया नहीं, उनको दे दीजिए। क्योंकि ये दिल के खुलेपन की है। हदीस में आता है कि फराख होना चाहिए दस्तरखान। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में मारूफ है कि खाना ही नहीं खाते थे जब तक तो कोई मेहमान ना आ जाए। एक दफ़ा खड़े हो गए कि कोई मेहमान नहीं आया, तो एक कोढ़ ज़दा, यानी जिसको लेप्रसी की तकलीफ थी, तो उसको भी साथ ले आए। यानी अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि कोई उनके साथ खाए। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से जो रिस्क की बांट है, आम रिस्क कौन सा और ख़ास रिस्क कौन सा है। और अब आपने बिल्कुल अपने आप पे लेके सोचना है कि मुझे हर वक्त किस रिस्क की फ़िक्र पड़ी रहती है। क्योंकि जो ख़ास लोग होते हैं ना, वो ख़ास रिस्क लेते हैं, और जो आम लोग होते हैं ना, वो आम रिस्क लेते हैं। तो रिस्क आम क्या है? जो नेक और बद को मिलता है, अगलों और पिछलों सब को शामिल है, ये है रिस्क बदनी, बदन वाला रिस्क। आगे इसकी किस्में बताऊंगी, अभी आप सिर्फ इसी पे रुके। जिस्मानी रिस्क जिसको आप कह सकते हैं, और दूसरा आता है रिस्क खास, ये दिलों का तोशा। और ये दिलों की ग़िज़ा इल्म और ईमान से हासिल होती है। क्यों? अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई कि अल्लाहुम्मा अरज़ुकनी तदब्बुरा व तफक्कुरा, कि अल्लाह मुझे तदब्बुर का रिस्क दे, मुझे तफक्कुर का रिस्क दे, मुझे कुरान के मानी में गौर करने वाला बना दे। तो रिस्क हलाल जो दीन के मुताबिक अमल करने पर मदद करता है, ये रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से मोमिनों के साथ उनके ईमान के मर्तबों के एतबार से ख़ास है, जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत और रहमत तकाजा करती है। इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह ने अपने कसीदे और उनकी किताब असल में अल-नूनिया, उसमें कहते हैं कि अर-रज़्ज़ाक भी अल्लाह के पाक नामों में से एक नाम है, और इसी की तरफ से अता करदा रिस्क की दो किस्में हैं। एक रिस्क वो है जो अल्लाह की तरफ से उनके बंदे और रसूल के ज़रिए दुनिया वालों को अता किया गया, इसको दिलों की ग़िज़ा कहा जाता है। और इसकी भी फिर दो किस्में मारूफ हैं, एक इल्म और दूसरा ईमान। ज़रा से रुक के सोचिए, आप इस रिस्क के कितने हरीस हैं, आप इसकी कितनी ख्वाहिश है दिल में। और आज इंसानियत को देखिए, तो इस रिस्क को पाने और इसके लिए तड़पने और बिखरने वाले कितने हैं और दूसरे कितने हैं, ये बाप और मैं खुद अपने अपने घर को और अपनी अपनी ज़िंदगी के रूटीन लाइफ के सर्कल को देखें तो हमें समझ आता है बहुत थोड़े हैं। ये ख़ास रिस्क होता है, इसको रिस्क ख़ास कहते हैं। इसके अलावा दूसरी किस्म जिसमें जिस्म और बदन का रिस्क है, यही वो रिस्क हलाल है जिसका अता करने वाला हमारा रब अर-रज़्ज़ाक है, और सब कुछ उसके लिए। फिर आप देखिए, जिस तरह उसने रिस्क के ख़ास यानी इल्म और ईमान का जो रिस्क है उसको वही के ज़रिए दिया, अम्बिया कराम और फरिश्ते के ज़रिए पहुँचाया ना, तो जो बदन का रिस्क है ना, इसके लिए अल्लाह ने पूरे जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा बना दिए। फिर जिस्म के अंदर खून की नालियाँ, ग्लूकोज, खून, पानी, कुछ ये वो करते कराते अल्लाह ने पूरा सिस्टम बना दिया। क्या बात है कहने की। हकीकत यह कि जब एक इंसान अल्लाह को पा जाता है ना, उसका कुर्ब आता है। तो किसी ने बेसाख्तगी में एक मौके पे एक जुमला बोला, लोगों ने उसको भी लिख दिया, कहता है कि मुन्ज़ु अरफ़्तु खालिकी मा शककतु फी रिज़्क़ी, जब से मैंने अपने खालिक को पहचाना है, मैंने अपनी रोज़ी के बारे में कभी शक या फिक्र नहीं की। लिखिए अपने लिए, क्या हम उस मजनून या उस मौला की पहचान रखने वाले की तरह सोचते हैं? जब खालिक है, जब रज़ाक है, तो मुझे क्या गम कि मेरी रोजी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह रज़ाक ने हर जानदार की रोजी अपने जिम्मे ली हुई है। अल्लाह ताला सूरत हूद के बिल्कुल शुरू में फरमाते हैं, आयत नंबर 6 है, 12वें पारे की पहली आयत भी है, कि वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। कोई जानदार हुए ज़मीन पर चलने वाला ऐसा नहीं है कि इसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे ना हो, और रिस्क रसानी के लिए इल्म की ज़रूरत होती है। हर एक के मुस्तकिल रहने की जगह और आर्जी रहने की जगह को भी वो जानता है। तो अल्लाह ने तो ये सब कुछ लोहे महफूज में लिख लिया है, तो क्या पता चला कि खास रिस्क हो या दूसरा रिस्क हो। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि मैं तुम्हें दूंगा। किस तरीके से अल्लाह ताला लोगों को रिस्क देता है, इसकी आपको बीसियों मिसालें कुरान सुन्नत में और फिर बाद में असलाफ और सहाबाए कराम के वाकयात में मिलेंगी कि आप मान जाएंगे कैसे ही होगा, हकीकत है कैसे ही होता है। कैसे अल्लाह के नबी सल्लम लोगों को भेजा करते थे, आप हजरत मूसा को देखिए, आग की तलाश में कोहे तूर पर पहुंचे थे और वहां से वही का रिस्क मिल गया, नबूवत का रिस्क मिल गया। अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत बातें की, अल्लाह ने उनको कलीमुल्लाह बना दिया, अल्लाह ने उनको लाठी दी और लाठी उनकी असा बन जाती थी और कभी साम बन जाती थी। ये रिस्क होते हैं, अल्लाह ताला की शान है, वो पत्थरों के अंदर जो छुपे हुए कीड़े ना उनको भी रिस्क देता है। तो याद रखिए, आप ये जुमला आज के बाद ना बोलिएगा, कहाँ से खाएंगे। और जो कुरान ने कह दिया ना आपको, ला तक्तुलू औलादकुम मिन खशयति इमलाक, सूरह बनी इसराइल की आयत है, अपनी औलादों को फकर की वजह से ना मारा करो। तो आज के बाद आपने ये दो जुमले नहीं बोलने के दो बच्चे खुशहाल कराना, ज्यादा होंगे तो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से खाएंगे, ये तो शिर्क हो जाएगा इतना बड़ा। आप नहीं खिला सकते, वो है रज़ाक जो अजीबो गरीब तरीके से कायनात का निज़ाम चलाए हुए है, व यालमु मुस्तकर रहा व मुस्तदहा। तो लिहाजा रिस्क की जिम्मेदारी दुनिया के लोगों और हुकूमतों के जिम्मे नहीं है। शोहर कवाम है लेकिन फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं, उस गरीब को रोजी ना मिले तो वो घर आके कैसे खिलाएगा। हुकूमतें खुद कर्जों में डूबी हैं तो वो लोगों को कहाँ खिलाएंगी। कोई इदारा, कोई इंश्योरेंस, कोई चीज, जितना मर्जी कोई कह दे आप जॉब छोड़ दीजिए, वो इदारा आपको छोड़ देगा। याद रखे सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो आपको माँ के पेट में भी खिलाता था, पैदा होके जब दांत नहीं थे तो दूध पिला दिया, और जब बड़े होने लगे तो सॉफ्ट फूड से ले लेकर आज आप देखिए बड़ी बड़ी चीज़ें चबा जाते हैं। तो अल्लाह की शान है जिसने आपको एक ख़ास और आम रिस्क दिया, और फिर सब लिखा हुआ है, हम मर नहीं सकते जब तक हम अपना रिस्क पा नहीं लेते हैं। अब इसकी मजीद तीन किस्में करते हैं, क्योंकि ये वो रिस्क के वादे हैं जो अल्लाह ताला ने आपके मेरे साथ रखे हुए हैं। तो याद रखिए कि जो आम रिस्क है ना, उसको ख़ास रिस्क को दोनों को जोड़ देना तो फिर तीन बड़ी किस्में बनती हैं, जिस्मानी रिस्क, रूहानी रिस्क और कौनी रिस्क। जिस्मानी रिस्क जिस्म को जो चाहिए सभी जानते हैं, रूहानी रिस्क जो रूह को चाहिए, और कौनी रिस्क जो कायनात में छुपा हुआ है। मसलन आप देखिए कि जिस्मानी रिस्क, सबसे पहली बात है ग़िज़ा, फूड, इंसान और तमाम मखलूकात को ग़िज़ा देने वाला। फिर इसमें रहने का इंतज़ाम, आपके मेरे जिस्म की ज़रूरत है, गर्मी सर्दी से बचना है और बहुत सारे ख़तरों से इंसान ने बचना है, अल्लाह ताला वो भी देता है। घर, रिहाइश, वो एक कमरे की है या एक कनाल का घर है, अपना घर अपना ही होता है चाहे एक कमरे का हो। फिर इसी तरह इसी में औलाद आती है, जब जहाँ जिसको जितनी देना चाहे। इस पे अगर एंड पे मौका मिला तो बात करूँगी, क्योंकि आज का ये बहुत बड़ा मसला है, औलाद छोटी, जो अल्लाह के नबी ने कहा कि उम्मत में कसरत से देखना चाहता हूँ, और जिस पे हुकूमतें हजारों डॉलर्स और क्रोन्स देने को तैयार हैं, बच्चे पैदा करो हम तुम्हें देंगे, लेकिन बंदा आज उसी से परेशान है। फिर इस तरह सेहत इसी में आती है, बीमार और कमज़ोर को सेहत देने वाला रज़ाक है, कुव्वत देने वाला रज़ाक है, कहा करे या रज़ाक मुझे सेहत का रिस्क दे, या रज़ाक मुझे हलाल और तैयब रिस्क दे। और जितना ज़्यादा आप अल्लाह के आगे बिछते जाएंगे ना, अल्लाह सुबहाना तला उतना ज़्यादा आपको ये देते ही जाएंगे। और सूरत अनकबूत की आयत 60 है, अल्लाह सुबहाना तला ने अपने इस वादे का तज़किरा फरमा दिया, वकाइम मिन दाबतिन, और कितने ही चलने वाले हैं इस जमीन पे दाबा दबीब से हल्की चाल वाले कितने जानदार हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते। अल्लाह इन्हें रिस्क देते और तुम्हें भी, और वही सब कुछ सुनने और जानने वाला। क्या पता चला सुबह उठ के आप देखा करें परिंदे कितने बाहर आए होते हैं, चिड़िया, तोते, बिल्लियाँ, कौवे, रातों को चूहे और इसी तरह की छछूंदरें निकल आती हैं। किनकी फैक्ट्रियाँ, किनका कुछ है, कुछ भी तो नहीं है, अल्लाह तला देता है। फिर इसके बाद देखिए कि अगर रूहानी रिस्क को देखें तो इसमें क्या क्या आता है। इल्म, इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत। फिर इसी तरह इसमें ज़हानत, इंटेलिजेंस, इंसान को अल्लाह ने ज़हनी सलाहियतें दी, काबिलियतें दी। फिर इसमें ईमान आता है, क्योंकि ईमान के बगैर इंसान अधूरा है। और फिर इसमें हिदायत का रिस्क है, अल्लाह की अनमोल दौलत, क्योंकि गाइडेंस इज़ अ गिफ्ट, हिदायत एक हदिया है, अल्लाह हमें अता फरमा दे। फिर इसमें फहम, अंडरस्टैंडिंग लेवल, कुछ का बड़ा ही लो होता है, कुछ का बहुत अच्छा होता है, ये अल्लाह ने दिए, उसकी बांट है, उसको अपने हाथ में नहीं रख सकते, माँ भी नहीं किसी बच्चे को दे सकती, ना बाप दे सकता। फिर इसी तरह से सुकून, अल्लाह की याद में रहने वाले को सुकून मिलता है। तो कह लीजिए कि यार रज़ाक सुकून का भी रब है, सुकून देने वाला रज़ाक है। तीसरी किस्म कौनी, कौनी लफ्ज़ पता है क्या, कायनात, कायनात, यूनिवर्स, इसके इर्द गिर्द जो कुछ दिखता है। इसमें क्या आता है, मौसम, बारिश, धूप, हवा, कितनी बारिश बरसेगी, कितनी धूप होगी, कितनी हवा आएगी। और पानी सबसे कीमती रिस्क है, आप सूरह मोमिनून में पढ़िए, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया। फिर चार मौसम, फोर सीजन्स, आजकल बर्फ़ एंजॉय कर रहे हैं, बाद में बहार आ जाएगी, फिर उसके बाद ऑटम आ जाएगा, और फिर विंटर आ जाएगा, और बीच में कितना कुछ आएगा। कैसे अल्लाह हमारे मूड्स को चेंज करता रहता है मौसमों के साथ। फिर फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां, दिन रात, ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे, कायनात के अंदर फैली हुई ये सारी चीज़ें अल्लाह ने आपके मेरे लिए रखी। जैसे सूरत बकरा की आयत 212 में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, अल्लज़ी जअल लकुम अल अर्ध फिराशं वस्समा बिनाउं वअन्ज़ल मिनस्समा इमाअन, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बना दिया और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा करके तुम्हें रोज़ी दी, खबरदार बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर ना करो, यानी जिसका खाते उसके गुण गाओ। तुम्हारा मामला ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाओ किसी का और मानो किसी और का। और फिर याद रखिए रज़ाक का एक और खूबसूरत एंगल लीजिए, नामुमकिन हालात में रिस्क देने वाला, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में बदलने वाला। सूरह तलाक आयत 3 है, व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, और उसे ऐसी जगह से रोज़ी देता है जिसका उसे गुमान भी ना हो, और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसको काफ़ी हो जाएगा। सूरत तलाक में कई दफ़ा रिस्क का जिक्र है। रुकिए ज़रा, आज क्या लोग कहते हैं, तलाक होगी तो औरत कहाँ से खाएगी, सारी ज़िंदगी गलत तरीके से रहते रहते हैं और बड़ा कुछ करते कराते हैं, लेकिन नहीं, कहाँ जाएगी, रुल जाएंगे, हाय कोई नहीं, मामा नहीं, चचा नहीं। देखिए हम, अल्लाह ना किसी को आजमाइश में डाले, शौहर नहीं है रज़ाक, अल्लाह वहाँ से देते हैं जहाँ से कोई जानता नहीं। तो मैं सोच के खुश हो रही थी कि अल्लाह रज़ाक के लफ्ज़ के साथ सूरत तलाक जुड़ी हुई है, ये मुझे आज पता चला, क्योंकि कई दफ़ा पढ़ाई सूरत तलाक, लेकिन चूंकि आज इधर पढ़ना था तो तवज्जो जा रही थी। तो याद रखिए ऐसी जगह से रिस्क देते हैं जहाँ से वहमो गुमान भी नहीं होता, गैर मुवाफिक हालात को मुवाफिक बना देते हैं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, सूरत तलाक की दुआएं हैं। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात के रास्ते बना देता है और ऐसी जगह से उसको रिस्क देता है जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होता। तकवा के साथ रिस्क जुड़ा हुआ है, गुनाहों से डरना, बचना, एहतमाम करना, तौबा इस्तग़फ़ार कर लेना, और रज़ाक वहाँ से रिस्क देता है बंदा सोच नहीं सकता। और याद रखिए कि तकवा के फिर तीन दर्जे हैं। पहला दर्जा होता है दिल और अज़ा को हराम कामों से बचाना, दूसरा होता है मकरूहात से भी परहेज़ किया जाए, फिर तीसरा दर्जा आता है फजूल और बेमकसद बातों से भी परहेज़ किया जाए। जब बंदा तकवे के पहले दर्जे पे आ जाता है ना, हराम से बचने वाला कह लीजिए, तो बंदे की रूह को ज़िंदगी और खुशी का रिस्क मिलता है। जब बंदा दूसरे दर्जे पे होता है तो रूह को सेहत और कुव्वत का रिस्क मिलता है, और जब बंदा तीसरे दर्जे पे आता है तो फिर फरहत, सुरूर और ताजगी का रिस्क मिलता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें तकवा के तीनों दर्जे नसीब फरमाए, वरना तो दुनिया से ऐसे सिसक सिसक के ना चले जाएं। बहुत सारे लोग हैं अपने आप को ख्वार करके दुनिया से जाते हैं, जानवरों की तरह सारा दिन रिस्क की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। अल्लाह ने मर्दों के जिम्मे रखा है, अल्लाह सलामत रखे और उनको थोड़े में भी बरकत दे दे। दो कारोबार क्या करने हैं, ये कहें अल्लाह इसी एक में बरकत दे, और जो फालतू वक्त है उसमें मुझे रूहानी रिस्क दे।